तीन घड़ियां आ पहुंची हैं, कुछ ही क्षण रह बाकी हैं। अंतिम घड़ियां आ पहुंची हैं, कुछ ही क्षण रह बाकी हैं। समय बीतता जाता
सभी स्पार्कलर्स जो फॉलो फादर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, साथ ही अन्य ब्राह्मण कुलभूषण जो तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्यारे बाबा को फॉलो कर रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, आप सभी को आज के इस संध्याकालीन सत्र में अभिनंदन करते हुए शिक्षक दिवस की मैं शुभकामनाएं दूंगा। आज टीचर्स डे है और शिक्षक उसे कहते हैं, बहुत सुंदर सी परिभाषा है यदि इसका संधि विच्छेद करें तो, शि अर्थात जो शिखर की ओर ले चलने वाला है, क्ष अर्थात जो क्षमा की भावना रखने वाला है, और क अर्थात जो कमजोरियों को दूर करने वाला हो, अर्थात विद्यार्थी की सभी गलतियों को क्षमा करते हुए, उनकी कमजोरियों को दूर करते हुए उसे शिखर की ओर ले चलने वाले को ही सच्चा शिक्षक कहते हैं। और ऐसे शिक्षक सचमुच हमारे प्यारे शिव बाबा हैं, जो हम सबको 1936 से लेकर अब तक इतने प्यार से शिक्षा दे रहे हैं, हमारी कमजोरियों को दूर कर रहे हैं, हमारी भूलों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्षमा करते हैं और शिखर की ओर ले चल रहे हैं, ऐसी ऊंचाई की ओर जिस ऊंचाई तक और कोई हमें नहीं ले जा सकता। वो हमें हाईएस्ट, होलिएस्ट और रिचेस्ट बना देते हैं सारे कल्प में। तो ऐसे प्यारे सुप्रीम टीचर को और साथ ही ब्रह्मा बाबा को, जिन्होंने 36 से लेकर के 69 तक साकार में हमें पालना दी, शिक्षा दी और साथ ही अब तक अव्यक्त रूप से हमारी पालना कर रहे हैं, शिक्षाओं से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, रोज की मुरली से हमारी पालना कर रहे हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं, साथ ही साथ हमारी सभी एडवांस पार्टी की आत्माएं, हमारी दादियां जिन्होंने भी अपनी शिक्षाओं से हम सबको श्रृंगारा है, उन सबको भी हम नमन करते हैं, हमारी टीचर्स बहने जो कि सेंटर पे रह करके वर्षों से त्याग तपस्या का जीवन जी रही हैं, हम सबका मार्गदर्शन कर रही हैं, उन सबको भी आज के इस टीचर्स डे पे नमन है। और आप सभी भी जो रूहानी टीचर्स हैं, मास्टर टीचर्स हैं, बाबा के जैसे बन करके सभी को शिक्षाओं से सजा रहे हैं, आप सबको भी आज के शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सबका मार्गदर्शन सतत करने वाले, हम सबको आगे बढ़ाने वाले, प्रेरणा देने वाले ऐसे हमारे सीनियर टीचर, मैं हेडमास्टर भी कहता हूं उनको, आदरणीय सूर्य भाई जी भी हमारे साथ हमेशा की तरह हमारी मार्गदर्शन करने के लिए हैं। उनका भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उन्हें भी टीचर्स डे की शुभकामनाएं देते हैं। राधा जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और सभी की ओर से टीचर्स डे की आपको शुभकामनाएं। और ब्रता जी आज का विषय रखा गया है बेहद की वैराग्य वृत्ति। आप सभी जानते हैं कि हर 15 दिन में एक सुंदर विषय लेकर के फॉलो फादर प्रोजेक्ट में हम चल रहे हैं, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति इस 15 दिन के लिए थीम है। बाबा ने हमेशा कहा है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति ही जैसे मुक्ति धाम का गेट खोलने वाली है और इसके निमित्त तुम सब बच्चे हो, बाबा ने कहा है। जब तक बेहद की वैराग्य वृत्ति तुम्हारे अंदर नहीं होगी तब तक विश्व की आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी। तो ऐसा जो बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है उस पर आप सबने अपने प्रश्न प्रेषित किए हैं। पहले हम आदरणीय भ्राता जी से इस विषय पर सुनेंगे, पश्चात आपके प्रश्नों को लेकर उन तक चलेंगे। भ्राता जी
ओम शांति। वैराग्य साधनाओं के मार्ग में प्राचीन काल से ही बहुचर्चित रहा है और अनेक लोग वैराग धारण करके हमारे देश में विशेष संन्यास भी लेते रहे हैं। वैराग से त्याग वृत्ति स्वतः ही आ जाती है और त्याग से तपस्या होने लगती है, क्योंकि मनुष्य का मन तपस्या के लिए बहुत एकाग्र चित्त होना चाहिए। और अगर वस्तुओं में, पदार्थों में, व्यक्तियों में आसक्ति है तो एकाग्रता होती नहीं है, फिर साधनाएं मेहनत की साधना हो जाती, एकाग्रता होती नहीं। और यही बात हुई अनेक संत महात्माओं के साथ भी, और यही बात हो रही है ब्रह्मवत्सों के साथ भी जो राजयोग के सर्वोत्तम मार्ग पर अग्रसर हैं। व्यक्तियों में वस्तु, खान पान, साधन, इलेक्ट्रॉनिक्स के साधन, इन सब में यदि हमारा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है तो एकाग्रता भंग होती है और तब हम श्रेष्ठ योगी नहीं बन सकते, परमात्म सुख से वंचित रह जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, जो 5000 साल में केवल अभी प्राप्त होता है। अतीन्द्रिय सुख, परमात्म सुख, परम आनंद, आनंद की व्याख्या कोई कर नहीं सका आज तक, क्योंकि ये एक अनुभूति है। जैसे मीठा क्या है इसकी व्याख्या कैसे कोई करेगा, वो एक अनुभूति है, वो एक टेस्ट है। परम आनंद, सर्वोच्च स्थिति, परमात्म मिलन, उसकी प्राप्ति के आधार पर होती है और वैराग्य इसकी नींव है। इसलिए जिनको महान तपस्वी बनना हो, जो बाबा की आज्ञाओं का पालन करना चाहते हो, वो सब अब वैराग्य को धारण करें। और हम चर्चा करेंगे अभी कि हमारा वैराग्य ज्ञान युक्त है, हमारा वैराग्य सूखा नहीं है। ऐसा नहीं हम राख लपेट के शरीर को पड़े रहेंगे कहीं ऐसे ही, हमारा बड़ा रॉयल वैराग्य, ज्ञान युक्त वैराग्य, सुखदायी वैराग्य है। तो आइए आज हम इस पर चर्चा करते हैं और निश्चित रूप से आपके जीवन में वैराग्य की परसेंटेज बढ़ जाएगी।
जी भ्राता जी, पहला प्रश्न है भ्राता जी, एक वैरागी शब्द तो दुनिया में प्रचलित है लेकिन बाबा बेहद के वैरागी शब्द यूज करते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है?
देखिए, सन्यासी आदि जो वैराग धारण करके गए, घर से, बच्चों से, पत्नी से छोड़ा, फिर कईयों ने धन से भी वैराग रखा, पद पोजीशन, शिष्य बनाना, इनसे भी वैराग रखा कई सन्यासियों ने, ये सत्य बात है। और वही सिद्ध पुरुष बने, और जो इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए वैराग के बाद भी, वो फिर गृहस्थी जैसे हो गए, सन्यासी बनकर भी गृहस्थी। तो बाबा कहता है बेहद का वैराग्य माना, ये जो सारी दुनिया है इसमें जो कुछ वैभव है, इसमें जो कुछ दिखता है, उस सब से वैराग्य, अपनों से नहीं केवल, सारे संसार के मनुष्य मात्र से वैराग्य, साधनों से वैराग्य, अर्थात जो चीजें दिखाई देती हैं वो जाने वाली हैं, उनमें हमें अटकना नहीं है। इसलिए हमारे जो वैराग्य है उसका लेवल अनलिमिटेड हो जाता है, कहीं ठहरता नहीं है वो। हमें कहीं मान मिल रहा है, हमें धन की प्राप्ति हो रही है, हमें बहुत खुशी मिल रही है सेवाओं से, वो मिलेगी, हम अच्छे काम करेंगे, हमें मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, लेकिन उसमें आसक्त न होना ये वैराग्य है
जी।
तो इसलिए इसका लेवल क्योंकि बहुत बड़ा है, छोटा नहीं कि घर से वैराग्य आ गया, धन से वैराग्य आ गया। और फिर हमारा वैराग्य, दूसरी बात, विकारों से वैराग्य, ये भी इस अनलिमिटेड वैराग्य में आ जाता है, इसलिए इसको बेहद का वैराग्य कहते हैं।
जी जी, हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति है या अल्प समय का वैराग्य, यह हम कैसे समझें? मतलब बेहद के वैरागी की निशानी क्या?
देखिए, अगर अल्प काल की वैराग वृत्ति होगी, इसको हम उदाहरण देते हैं शमशानी वैराग्य से। लोग शमशान में जाते हैं, हर व्यक्ति बोलता है अरे भाई ऐसे ही हम भी चले जाएंगे, क्या लेकर गया बेचारा, कितनी आहू करता था, हमारा भी यही हाल होगा। घर लौटते लौटते वैराग्य पुनः राग में बदलने लगता है, सबके साथ ये होता है। तो जिसका टेम्परेरी वैराग्य होगा वो जल्दी जल्दी राग में बदलेगा, कुछ घटना हुई विनाश की, कोई बीमारी आई, कुछ और बड़ी चीज देख ली, वैराग आया, तेज पुरुषार्थ में लग गए, फिर वो चीज खत्म हो गई तो फिर वैसे ही हो गए। लेकिन जिसका बेहद का वैराग्य होगा वो सदा के त्यागी और सदा के तपस्वी होंगे, वो प्राम हो गए होंगे, वो कहीं भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनकी बुद्धि मन इन चीजों में भटकना सदा के लिए बंद हो गया होगा, ये उसकी निशानी है।
जी जी जी, प्रवृत्ति में रहते हुए हम कैसे बेहद के वैरागी बने, क्योंकि वहां तो बहुत सारी हमारी जिम्मेवारियां हैं, कार्य भी करने हैं, और उनके बीच रहते हुए फिर हम अनासक्त हों, थोड़ा कठिन।
हाँ बिल्कुल, ये बात बहुत ही प्रैक्टिकल है, क्योंकि जो लोग गृहस्थ में रहते हैं उनकी जिम्मेदारियां, बच्चों को उन्होंने जन्म दिया, उनमें मोह, उनको पढ़ाना, बड़े करना, पालना करना, शादियां करना, सेटल करना, बहुत सारा लंबा चौड़ा पसारा है गृहस्थियों का।
जी जी,
अभी इस सब में रहते वैराग्य बड़ी गहन और रॉयल बात हो जाती है। कई लोग वैराग धारण कर लेते हैं, हमें कुछ नहीं करना, तुम जाओ जो चाहे करो अपना, बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे ठीक है, कोई बीमार हुआ तुम जानो, हमें तुमसे कोई लेना देना,
हम तो वैरागी हैं
सन्यासी हैं, उदासी हैं। ये नहीं वैराग होता, कर्म करते अपने को ट्रस्टी मान लेना, कर्म करते धन मान लो, आपको बहुत आ रहा है, ठीक है आ रहा है, कल ये धन किसी और के पास था, आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा। धन में तो एक प्रवाह है, कावत है लक्ष्मी चंचल होती है, ठीक है आ रहा है, हम उसे यूज कर रहे हैं, सुख पा रहे, ठीक जमा भी कर रहे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो जाना है तो जाना है, उसमें आसक्ति नहीं, वो जिसने दिया वो कल फिर देगा, ये भावना रखना, ट्रस्टीशिप का पालन करना, और मेरा घर बाबा का यज्ञ है, मैं उसको संभालने वाला हूं, ये बच्चे उसके हैं, तो ये अलौकिकता आने से इनमें हम फंसेंगे नहीं, इसको कहते हैं वैराग्य।
जी जी, मतलब मानसिक रूप से हम बिल्कुल न्यारे रहें, लेकिन शारीरिक रूप से, बाह्य रूप से अपनी सारी जिम्मेवारियों का पालन
है, ये बहुत ऊंची स्थिति, ये गृहस्थियों से हजार में से एक से होगा, हम जानते हैं ये कठिन काम है, क्योंकि सब कुछ छोड़कर भी मनुष्य वैरागी नहीं बन पाता है, लेकिन अगर इसको अपना लक्ष्य बना लिया जाए और इसकी इन बातों पे चिंतन रखा जाए कि अब घर चलना है हमें, ये खेल पूरा हो रहा है, तो वैराग की जो लेवल है वो बढ़ती चलेगी।
बाबा कहते हैं कि आपका बेहद का वैराग्य विश्व की आत्माओं को वैरागी बनाएगा, परंतु वास्तव में गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए हमारा त्याग तपस्या का जीवन देखकर संबंधी और ही विरोधी हो जाते हैं। तो विश्व की बात तो बाद में है, पहले हम उन्हें अपना सहयोगी कैसे बनाएं, वैराग्य वृत्ति में रहते हुए अपने संबंधों में मधुरता कैसे बनाएं, किस हद तक अपनी जिम्मेवारी पूरा करें।
देखिए, ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया, ये जो पहला प्रश्न, इसका जो पहला पार्ट है
जी,
हमारी वैराग्य वृत्ति से संसार में वैराग आएगा। आजकल संसार में क्या है, आसक्तियां बढ़ती जा रही हैं, और हम एक एक आत्मा महान आत्माएं हैं, मैं कहूं एक एक इष्ट देव देवी है, पूर्वज है, तो हमसे जो रिलेटेड आत्माएं हैं हमारे वैराग्य का इफेक्ट उन पर आएगा। जरूरी नहीं हमारे संबंधी हमसे रिलेटेड हों, ये तो वर्तमान हमारे रिलेटिव हैं, वो रिलेशनशिप जो युगों युगों का है ये बाबा उसकी बात करते हैं। फिर हमारे वैराग्य से क्योंकि हमारी तपस्या बहुत अच्छी चलेगी इसलिए वैराग उसका प्रभाव तपस्या का दूसरों पर आएगा। रही बात व्यवहार की, वैराग का अर्थ जैसे अभी गृहस्थी लोग हैं उन्हें फंक्शंस में जाना है, बच्चों के जन्मदिन पर जाना है, शादियों में भी हिस्सा लेना है, अभी कोई बहन है मैरिड है उसके भाई की शादी हो रही, वो कहे मैं तो वैरागी हूं मैं तो नहीं आऊंगी तो काम नहीं चलेगा
जी।
तो वहां जाना है, पार्टीज में हिस्सा लेना है, लेकिन हम अपनी अलौकिक स्थिति में भी तो रह सकते हैं, करके देखे जो हमें सुन रहे हैं बहुत अच्छे स्वमान में रहें, मैं इन सब के बीच महान आत्मा हूं, मैं इन सब की इस देवी हूं, इस नशे में रहें और ये सब भी बहुत अच्छे हैं, तो देखो वो ऐसे प्रभावित होंगे कहेंगे कि असली चीज तो इसके पास है भाई। वो जो निगेटिविटी होती है ये लोग नफरत कर रहे हैं, ये तो कहीं आते नहीं खाते नहीं, खाने में भी हमारी ऐसी स्थिति हो लोग हमें विवश करेंगे नहीं और अप्रिशिएट करेंगे कि इनकी ये धारणा प्रशंसनीय है, हमने देखी ये बात
जी।
लेकिन हमसे समझाना आना चाहिए, कहना आना चाहिए, लोग क्या सीधा कहते हैं हम तुम्हारा नहीं खाते, हम बाहर का नहीं खाते। कौन सुनाया करते ना, बहने गई थी माता के घर, उसने समोसे मंगाए थे, बहनों ने कहा माता जी हम बाहर का नहीं खाते, माता जी ने बड़े प्यार से उत्तर दिया बाहर का नहीं है बहन जी, घर में ही बनाया है। तो समझाना आता नहीं है बहुतों से, हम नहीं खाते ये चीजें, अगर हम ठीक से समझाना सीख जाएं तो, क्योंकि ये हमारी सर्वश्रेष्ठ धारणा ये देवतुल्य धारणा है
जी।
इसका प्रभाव लोगों पर न पड़े ये नहीं हो सकता है।
लेकिन यही सबसे ज्यादा कठिनाई आती हाँ। है लोगों को कि हम नहीं खाते तो ये जो संबंधों में मधुरता वाली बात है वो खत्म होती
यही
है।
यही वो मैंने यही बताया कि उनको समझाना नहीं आता
जी।
और पार्टी हो रही है तो उसमें से ऐसी कुछ चीजें ले लेनी चाहिए जो हम खा सकते हैं, जो मशीन मेड है अनटस्ड है, उसमें ऐसी रिजिडनेस नहीं दिखानी चाहिए कि हम तो तुम्हारा पानी भी नहीं पिएंगे, ये गलत हो जाता है
जी जी जी। तो यहाँ संबंधों में वो मधुरता बनी
थोड़ा
रहेगी। और जो एक बात आपने कही ब्रता जी कि एक बहुत अच्छी ऊंची स्थिति हो तो उसका इफेक्ट सचमुच बहुत ज्यादा होता है और लोग झुक जाते हैं हमारी धारणाओं के आगे। अगला प्रश्न ब्रता जी ये कहते हैं, विश्व परिवर्तन में बेहद की वैराग्य वृत्ति का क्या महत्व है?
देखिए अगर ब्राह्मणों में मैं आपको एक उदाहरण दूं, 1000 अच्छे जो ब्रह्मवत्स हैं उनमें बेहद की वैराग्य वृत्ति हो जाए तो वैराग वृत्ति का प्रत्यक्ष रिजल्ट होगा कि वो श्रेष्ठ योगी बन जाएंगे, उनका योग 8 घंटे से ऊपर पहुंचने लगेगा और इस योग के जो वाइब्रेशंस हैं वो संसार के वायुमंडल को चेंज करेंगे। और एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए, अगर हम में से 1000 आत्माएं महान योगी बन जाएं, बहुत अच्छे पवित्र बन जाए, वैराग की निशानी पवित्रता भी है
जी।
तो जो देवकुल की करोड़ों आत्माएं हैं उनको पहले हमारी ओर आकर्षण होगा और फिर बाबा की ओर, इसलिए ये जो विश्व परिवर्तन का कार्य है ये सहज हो जाएगा, हमारे वाइब्रेशंस प्योर वाइब्रेशंस योग के वाइब्रेशंस देवकुल की आत्माओं के देवत्व को जागृत करेंगे और वो उनको खिंचाव होगा। उन्होंने कहीं ना कहीं सुना जरूर है भगवान आया है, ब्रह्मा कुमारियां ज्ञान दे रही हैं, वो राजयोग सिखा रही हैं, पवित्र बना रही हैं, खिंचाव होने लगेगा
जी जी। ये तो बड़ी सूक्ष्म और महीन सी बात है कि कैसे हमारा वैराग्य सबको आकर्षित करेगा। जैसे बता जी कुछ बातें बाबा कहते हैं कि अब घर जाना है, अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, इन स्मृतियों से हमें वैराग्य आता है, ऐसी ही और कौन सी स्मृतियां हैं जो हमारी वैराग्य को प्रबल करें या जिन्हें याद करते ही जैसे वैराग्य आए?
मैं सभी भाई बहनों को ये कहना चाहूंगा कि बाबा की मुरली जब सुने तो इस नजर से सुने, इस एटीट्यूड से सुनेंगे, कि बाबा हमें याद दिला रहा है, कुछ स्मृतियों को जगा रहा है हमारी। बड़ा मजा आएगा मुरली सुनने में। रोज आप देखेंगे बाबा की मुरली में आ रहा है, बच्चे तुम देवता थे, तुम देवी देवता धर्म के हो, तुम बहुत पवित्र थे, तुम बहुत शक्तिशाली थे। रोज याद दिलाता है। तो मुरली सुने तो इस नजर से सुने, इस एटीट्यूड को सुने कि भगवान अपनी महान आत्माओं को कुछ स्मृति दिला रहा है और साथ साथ उसको स्मृति में लाते चलें। तो बाबा कहता है ये दुनिया अब खत्म होने वाली है, ये मिट्टी में मिल जाएगी, ये सच्ची बात है। इस कांटों के जंगल को आग लग जाएगी। तो ये बात अगर हम याद रखते हैं कि ये अंतिम समय आ पहुंचा है सृष्टि का भी, तो हमारे अंदर वैराग बढ़ता जाएगा। देह की ओर आकर्षण होता है, वैराग को राग में बदलने वाली सबसे बड़ी चीज ये होती है। देह तो विनाशी है, इन देहों से तो हम जन्म जन्म खेलते आए, अब इसका खेल ये हमें बंद करना है, मिट्टी का खेल। ये बात हमें वैराग की ओर ले चलती है। और दूसरी बात, जब हमें एक महान लक्ष्य की स्मृति हो जाती है ना, कि तुम्हें कर्मातीत होना है, तुम्हें संपूर्ण होना है। अब देखिए संपूर्ण होना है ये सभी सुन रहे हैं, लेकिन कितनों को लगन है? शायद 1% को भी नहीं है, 0.1% को भी नहीं है। अगर ये लगन लग जाए कि संपूर्ण होना है, उसका सुख क्या है उसको आत्मा चखने लगे, तो वैराग स्वतः ही आ जाएगा। ये सब बातें हैं जो हमें वैराग दिलाती हैं। ऐसे प्योरिटी का बहुत बड़ा सुख है, उसमें बहुत बड़ा आनंद है। जिसको वो मिल रहा है, विकारों से वैराग हो जाता है।
बिल्कुल, मतलब ऐसी कुछ बातें अपने पास नोट करके रखें, एक नजर डाल लें, ताकि हमारा जो वैराग्य है और ही प्रगाढ़ होता चले। ब्रदर जी, एक अगला प्रश्न हमारे पास है। ये कहते हैं, बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने के लिए, अपनी कर्मेंद्रियों की रचनाओं पर संयम रखने के लिए, क्या हमें हठ योग का सहारा लेना चाहिए?
ले लें तो वो ज्यादा नहीं चलेगा। क्योंकि अगर वो महत्वपूर्ण होता तो बाबा ही हमें वो सिखा देते कि इस तरह तुम पे जलेबी में आसक्ति है, खाओ नहीं। लेकिन बाबा ने तो खूब खिलाया। रसगुल्लों में आसक्ति है, खाओ नहीं, बाबा ने तो खूब खिलाया। खाओ और अनासक्त हो जाओ, यही तो बहुत बड़ी चीज
है।
इसमें क्या है कि बाबा हमें बहुत शक्तिशाली बना देना चाहता है कि तुम माया के बीच रहो, लेकिन माया तुम्हें टच न करे, इतने मास्टर ऑलमाइटी बन जाओ।
क्या थोड़ी समय के लिए करके देखा जा सकता है?
अगर किसी को जरूरत पड़े, कुछ लोग करते हैं अपनी प्योरिटी के लिए, भोजन में वो संयम कर लेते हैं। लेकिन मैं हमेशा क्या करता हूँ, ये रियल मार्ग नहीं है। भले ही आपके अंदर तूफान ज्यादा आते हैं, उत्तेजनाएं ज्यादा होती हैं, आपने भोजन को हल्का कर दिया। जैसे एक युवक साउथ का, उसने मेरे से बात की और भोजन का मैंने उसे प्रोग्राम दिया। प्योरिटी की बात थी
जी।
तो अपने भोजन को लाइट करो तो तुम्हारी प्योरिटी थोड़ी सरल हो जाए। उसने ना गाय के दूध पे रहना शुरू किया, पिया तो खूब पर सारा दिन गाय का दूध। अब जब 4 मास हो गए थे तब उसने मुझे फोन किया, मैं गाय के दूध पे रह रहा हूं और मेरी प्योरिटी निश्चित रूप से बहुत अच्छी हो गई है। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अब योगी बनो ताकि ये प्योरिटी स्ट्रांग हो जाए। प्योरिटी हमारी ऐसी शक्तिशाली हो कि हिमालय जैसी, चट्टानों जैसी शक्तिशाली, जिसको कोई हिला ना सके। ठीक है, हमने अपने भोजन में चेंज करके अपने तूफानी जो इम्प्योरिटी थी उसको नष्ट कर लिया, लेकिन ये भी बहुत जरूरी। इसलिए कर्मेंद्रियों के रसों को समाप्त करने के लिए मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं, कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। जैसे जैसे हमें आत्मिक रस बढ़ेगा, कर्मेंद्रियों का रस स्वतः ही छूटेगा। यही प्रॉपर विधि है जो हम सब कुछ खाते पीते भी उनके रसों से मुक्त रहेंगे।
जी जी, और देवताओं की भी यही स्थिति वास्तव में दिखाई जाती है कि सब कुछ है लेकिन
मान लो किसी को शुगर हो गया, हम में से डायबिटीज हो गई, अब बहुत अच्छी जलेबी बनी भोग में, अब जलेबी अब तक खाई थी लेकिन अब नहीं खाना है, तो अगर कर्मेंद्रियों के रसों पर विजय प्राप्त होगी तो उसको न खाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है, बहुत खा लिए, वही स्वाद किसी दूसरी चीज में आ जाएगा।
जी जी जी, जी। मतलब हम हट का सहारा ना लें,
हट का सहारा न ले तो अच्छा, लेकिन मैं ऐड किया कि अगर कहीं किसी को थोड़े बहुत अल्पकाल के लिए लेना पड़ता है तो हट जावे नहीं।
बिल्कुल व्रता जी, इस बार चार्ट में एक पॉइंट है कि बेहद का वैरागी बनना है तो अपने आप को मधुबन निवासी समझो, ये बाबा के महावाक्य हैं। तो दिन में कम दो बार चार धाम की यात्रा हम कर लें, ऐसा चार्ट में है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए हम अपने आप को मधुबन निवासी कैसे समझें, ये इनका प्रश्न है। और जिन्होंने मधुबन देखा ही नहीं या एक दो बार ही मधुबन आए हैं तो अपने आप को कैसे मधुबन निवासी।
देखिए, ये बहुत बड़ी चीज होती है, ये विशेष रूप से वो बहने जल्दी फॉलो कर सकती हैं जो सेंटर्स पे टीचर बन के गई हैं। भाई मधुबन हमारा घर है और ये हमारा ऑफिस है, लेकिन गृहस्थियों के लिए ये अवेयरनेस बढ़ाते तो चलें कि हम वहां के वासी हैं और यहाँ पार्ट प्ले करने आए हैं। लेकिन निश्चित रूप से गृहस्थ के लिए ये बात इतनी सहज नहीं है, लेकिन जो टीचर्स हैं उनके लिए बहुत सहज है, कुमार कुमारियों के लिए भी सहज है, वो इसका अभ्यास करें।
जी जी जी, वैसे बाबा ने व्रता जी इसे थोड़ा सा की कहा था कि जब तुम मधुबन, मधुबन शब्द ही है मधु और वन, मतलब मधुरता भी हो और साथ ही सन्यासी भी हो, वैरागी भी हो, तो मधुबन निवासी समझेंगे तो इजी हो जाएगा कि वैराग्य की स्थिति भी रहेगी और हाँ, साथ ही मधुरता।
इसका यही अभ्यास गृहस्थी लोग करें कि चारों धाम की यात्रा सवेरे श्याम मिनिमम दो बार तो कर ही लें।
जी, जी।
मैं ज्यादा टाइम नहीं कहूंगा, नहीं तो केवल थ्योरी हो जाएगी। मैं कहूँ आठ बार कर लो तो वो एक दिन भी नहीं कर।
चार्ट में इसीलिए दो बार ही रखा,
दो बार तो कर दें सवेरे और शाम बहुत अच्छी तरह। और आजकल अवेकनिंग पर ये प्रोग्राम आता भी है सवेरे 3:30 से, तो वो कर लेंगे तो काफी सुख मिलेगा।
बिल्कुल प्रताप जी, इस बार क्या पूरे ही इस फॉलो फादर प्रोजेक्ट में एक बात रखी गई है पूरे वर्ष के लिए कि बाबा होते तो, मतलब ब्रह्मा बाबा को अपने सामने देखते हुए हम उन्हें उनके पद चिन्हों पर चलें, ऐसा एक हमेशा के लिए अभ्यास रखा गया है। तो इस बार भी एक पॉइंट है व्रता जी कि ब्रह्मा बाबा को अपने सामने देखते हुए त्याग तपस्या और वैराग्य में उनको हमें फॉलो करना है। तो इनका प्रश्न है कि कृपया उदाहरण देकर बताएं कि हम कैसे संकल्प क्रिएट करें ताकि हमारे अंदर भी वो जो बाबा का त्याग तपस्या और वैराग्य है आए।
देखिए, मैं एक चीज इसमें थोड़ा सा चेंज कर देना चाहता हूं
जी।
इस संसार में हरेक की उन्नति का मार्ग अलग अलग भी हो सकता है। ऐसे संसार में अनेक लोग हैं जिन्हें हम जब ये कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो तो बात तो उन्हें अच्छी लगती है, लेकिन अंदर में रिजेक्शन होता है कि एक काम अपने वश का नहीं है, इधर ही ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पहले अपना एक सिंपल मार्ग क्रिएट करो, जिस मार्ग पे चल के आप अच्छे तपस्वी बन सकते हैं। अब बाबा के लिए तो अनेक बातें हैं, उनको शिव बाबा ने साक्षात्कार करा दिया और शिव बाबा को उन्हें अपना माध्यम बनाना था, उनके माध्यम से यज्ञ रचना था, इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वो थे भी ब्रह्मा, उनके लिए छोड़ना खेल की तरह था। सबके लिए ये नहीं हो सकता, सबके लिए तो यही है कि वो संकल्प करें सब कुछ तेरा है, ट्रस्टी बनकर संभाले। लेकिन ट्रस्टी बन के संभालना कहना तो सहज है, प्रैक्टिकल में ये गृहस्थियों के लिए अति कठिन काम है, इसको भी गिने चुने कर सकते। मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ बिल्कुल सहज है कर लो, क्योंकि जो सहज नहीं है उसको सहज हमें बनाना है, लेकिन अब तो वो कठिन है ना। और तपस्या का अपना चार्ट बनाओ 4 घंटे का रोज, तो ये अच्छा फॉलो फादर का तरीका हो जाएगा।
जी जी जी,
बस इतना थोड़े से शुरू,
मतलब शुरुआत इस रूप में करें, क्योंकि ब्रदर जी मुझे लगता है जो भाई बहने प्रोजेक्ट से जुड़े हैं फॉलो फादर प्रोजेक्ट से, तो उनके सबके अंदर ये उमंग तो है ही कि नहीं बाबा ने जैसा किया वो तो हमें करना ही है, ये इनके इन प्रकार।
तो बस एक ही चीज कर लें कि बाबा ने बहुत तपस्या की है शरीरी होने की, योगयुक्त होने की, उसकी प्रैक्टिस कर लें तो उसमें सब कुछ
शामिल हो जाएगा।
अब देखिए, बाबा का भी जो बहुतों को क्या किसी को भी पता नहीं है, ये बहुत थोड़े लोगों को पता है कि शुरू में ज्ञान तो बहुत कम था, इतना ही था तुम आत्मा हो, आत्मा के बारे में भी जो ज्ञान अब हमें है वो नहीं था तब, बस तुम आत्मा हो यहां। वही प्रैक्टिस की सबने बहुत, और अब हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। इसलिए जिसको शुरुआत करनी है वो अशरीरीपन का बहुत अच्छा अभ्यास करें तो धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे।
जी जी जी, मतलब शुरुआत करें और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलें, तो इसे ज्यादा भारी रूप में ना लें कि हमने एज इट इज वैसा ही करना है।
मैं इसीलिए इसको हल्का किया कि अनेक लोग ये बात सुन के मैंने कहा ना वो रिजेक्ट ही कर देते हैं, ये अपने बस का तो नहीं है, अपने धंधे 10 घंटे ड्यूटी में बच्चों को पढ़ाना संभालना ब्याह शादी दुनिया भर के लफड़े अपने बस का काम नहीं है। तो इसलिए एक सरल मार्ग अपनी रोड खुद बना लो।
जी जी,
और जैसे किसी का घर अलग होता है तो अपना एक छोटा सा रास्ता बना लेते हैं ना घर में जाने का, अपना मार्ग खुद बना लेना चाहिए।
बिल्कुल व्रत जी, अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा है कि बेहद का वैरागी अर्थात कहीं भी लगाव ना हो, दूसरों की बात तो छोड़ो अपने में भी लगाव ना हो, देह में बाबा ने ये कहा है, तो क्या हम जो अपने शरीर का ध्यान रखते हैं केयर करते हैं अपने स्वास्थ्य व सुंदरता को लेकर भी थोड़ी चिंतित होते हैं तो क्या ये भी लगाव कहलाएगा?
देखिए देह भान को छोड़ते अगर चलेंगे, और देह भान को छोड़ने का अर्थ है सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करते चलेंगे तो सुंदरता तो चेहरे पे पहले से ज्यादा आ जाएगी। ये जो साधन है ये लगाने ही नहीं पड़ेंगे। और दूसरी बात है हमें केयर तो करना ही चाहिए, वही बात तो हम करते आ रहे हैं, बैलेंस। ये नहीं कि शरीर तो बेकार है इसकी कोई वैल्यू नहीं है इसको तो छोड़ देना है, ये तो मिट्टी है क्या खिलाना इसको क्या सजाना इसको, ये भी नहीं। ब्रह्मा बाबा भी अपने शरीर की बहुत केयर करते थे और सजाते थे, कहता था शिव बाबा के घोड़े को तैयार कर रहा हूं अभी ना हो कोई मेरे पास, भोजन खिला रहा हूं घोड़े को मालिश करा रहा हूं जरा। तो ये सब तो करना ही होता है
जी जी जी,
क्योंकि
मतलब बाबा भी शरीर की तंदुरुस्ती का पूरा ध्यान रखते थे,
जी। क्योंकि जीना था और तपस्या करनी थी, और तपस्या तब तक नहीं होती जब तक हेल्दी बॉडी ना हो। इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है कि हम शरीर को वैल्यू ना दें। आज भी मुरली में था, तुम्हारा अंतिम शरीर बहुत मूल्यवान है, इसके द्वारा ही तो तुम भगवान से मिलते हो
जी जी,
इसलिए इसको पूरी वैल्यू देना, इसकी पूरी संभाल करना, इसकी पूरी ट्रीटमेंट रखना, हर चीज का ध्यान रखना, और आप समाज में रहते हैं थोड़ा बहुत श्रृंगार सजावट कर लेना
जी।
उसमें कोई बुरा,
जैसे कभी किसी समारोह में जाते हैं जैसे हमारी बात हुई थी तो वहां पे भी यदि सीधे साधे सफेद कपड़ों में चले गए तो अच्छा नहीं लगता,
चेहरे पे वहां धूल वो राख लपेट के तो नहीं जाएंगे ना।
कई बार एक संकल्प इसलिए आता है व्रता जी कि जैसे कई लोग अब नेचुरोपैथी में जाते हैं या करते हैं, उसमें थोड़ा वक्त देना पड़ता है खाना बनाने में ये करने में वो करने में, तो ये टाइम वेस्ट तो नहीं है?
देखिए हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए, कोई भी पैथी अपने में परफेक्ट नहीं है। मैं कई नेचर के और फॉलो करने वालों को देखा जो सोचते थे हमें कोई बीमारी होगी नहीं, अच्छी अच्छी बीमारी आ गई उन्हें, क्योंकि कई चीजों की डेफिशिएंसी हो जाती है। रोज आप बॉयल सब्जी खाओगे, घी दूध बिल्कुल नहीं लोगे, मसालों का बिल्कुल त्याग करोगे, नमक भी नहीं खाओगे, शरीरों में कई तरह की डेफिशिएंसी आएंगी, डॉक्टर अच्छा बता सकते हैं, मैंने आते हुए देखा लोगों को
जी जी।
इसलिए एक सुंदर बैलेंस अपनी जो रोज की डाइट है उसको ही ऐसा बैलेंस कर लो कि वो हमें नुकसान न करे, हमें एनर्जी दे रस दे, हमारी शक्तियां उससे पैदा हो, और थोड़ा बहुत नेचर की ओर को फॉलो कर लेना अवश्य पार्ट ले लेके
जी 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 जी, मतलब एक मध्यम मार्ग हम अपना लें, ना बहुत ज्यादा अति हो जाए ना बहुत ज्यादा नीचे ध्यान ना देने वाली बात हो। प्रतिजी बाबा कहते हैं कि जब दृष्टि वृत्ति संबंध संपर्क सेवा आदि सभी में बेहद के वैरागी होंगे तभी मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा, मतलब बेहद के वैराग्य वृत्ति से ही गेट खुलेंगे, तो अपनी दृष्टि वृत्ति संबंध संपर्क सेवा इन सब में बेहद का वैराग्य लाना इसका भाव क्या हुआ?
दृष्टि माना आत्मिक दृष्टि, वृत्ति भी वही आत्मिक वृत्ति सुभावनाओं की वृत्ति, सेवाओं में बेहद का वैराग्य माना सेवा करके हमें रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, ये नहीं मैं और मेरा आ जाए, ये नहीं मान के पीछे भागने लगे, हर चीज में हम न्यारे और प्यारे बन जाएं, सिंपल भाषा में हम ये कहेंगे तो ये बेहद की वैराग वृत्ति होगी।
जी जी, मतलब ये भी मुझे लगता है एक लंबी साधना है। हाँ। और एक अच्छे अभ्यास के बाद हम इस स्थिति तक पहुंच पाएंगे।
मैं सार में यही कहूंगा कि अगर अशरीरीपन का बहुत अभ्यास किया जाए
जी।
और आत्मिक दृष्टि का, तो बहुत सारे वैराग्य की जो बातें हैं वो ऑटोमेटिकली जीवन में आ जाती हैं।
बहुत सुंदर सार गर्भित बात आपने कही बेहतर जी, हम उन प्रैक्टिसेस को जरूर शामिल करेंगे अपने उसमें। अगला प्रश्न है, एक तरफ हम वैराग्य की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारे सेंटर्स बाबा का रूम आदि आदि इतना शान से बनाते हैं, इंटीरियर की बात हो या फिर गिफ्ट पैकिंग की बात हो, भोजन की वैरायटी की बात हो, तो इन सभी के साथ वैराग्य वृत्ति का क्या कनेक्शन है? क्या सिंप्लिसिटी भी वैराग्य का अंग नहीं है?
तो इनका अर्थ है कि हम अपने सेंटर को झोंपड़ी में बदल गए अच्छी तरह से।
मतलब जो इतने शानो शौकत दिखते हैं इनका भाव
है, बहुत ज्यादा शानो शौकत भी ना रहे लेकिन एक मध्यम मार्ग तो हमें अपनाना ही पड़ता है। क्योंकि जितना अच्छा हमारा सेवा केंद्र होगा उतने अच्छे वहां के वाइब्रेशंस भी होंगे। अब फर्श को देख लीजिए, आपने काला पीला ऐसा वैसा फर्श डाल दिया है उसके वाइब्रेशंस, और आपने एक अच्छा सा फर्श डाला है उसके वाइब्रेशंस में अंतर होगा। आपने पर्दे ऐसे वैसे लगाए हैं उसके वाइब्रेशंस, और आपने बहुत सुंदर व्हाइट पर्दे लगा दिए उसके वाइब्रेशंस। ऐसे हर चीज थोड़ी अच्छी, सोफा भी हम लोगों ने इसलिए रखे हैं बैठने के कि भाई लोग आते हैं भिन्न भिन्न तरह के, किसी को कमर दर्द है, कोई नीचे नहीं बैठ सकता है, किसी को कोई बुजुर्ग है, तो उनके लिए साधन बना लिए। लेकिन ये सब साधन होते हुए भी हमारा योग न टूट जाए, यह है वैराग्य वृत्ति।
जी जी जी।
अभी कारें भी हैं, कारें सफर के लिए हैं, बहनें सेवाओं में जाती हैं, गीता पाठशालाओं में रात को आती थी, बसों में बैठ के कोई अकेली आ रही है तो वो हम सबको भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए यहीं से एक डायरेक्शन गया कि जो ले सकते हैं अपनी गाड़ी लें, तो सब बहनों को, चार बहनों को लिया, गीता पाठशालाओं में छोड़ते हुए गए और फिर सबको लेकर आ गए।
मतलब सेवा की पर्पस से
सेफ्टी भी रहती है और सेवा में भी और सहज टाइम भी बच जाता है।
जी, कई जगह बहुत हाई फाई यदि दिखाई देता है, कई बार होता है कि जो भाई बहने हैं वो बहुत सामान्य रहते हैं अपने घर में, बहुत सामान्य चीजों का इस्तेमाल करते हैं साधारण, लेकिन जब वो देखते हैं हम जो दे रहे हैं इतनी हाई फाई चीजों में यूज हो रहा है तो संकल्प चल जाता है, उनका संकल्प ना चले ऐसे में क्या?
इसके लिए सिंप्लिसिटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमारी चीजें हाई फाई बिल्कुल ना, हम संगम पे हैं
जी,
ना सतयुगी ना कलयुगी, इसलिए संगम का ही ध्यान रखना चाहिए।
जी बैलेंस बिल्कुल। प्रताप जी अगला प्रश्न है, हम जितना वैराग्य वृत्ति को धारण करने की कोशिश करते हैं उतना ही कर्म बंधन हमें अपनी ओर खींचता है, तो इस कर्म बंधन से अपने आप को कैसे हल्का करें?
योग बल के द्वारा, क्योंकि कर्म बंधन को योग बल से ही काटा जाता है। कई लोग क्या केवल वैराग धारण करते हैं, ध्यान देंगे इस बात पर, लेकिन वैराग हम क्यों धारण कर रहे हैं, जिसलिए धारण कर रहे हैं वो नहीं करते। हम वैराग धारण कर रहे हैं श्रेष्ठ साधनाओं के लिए, अशरीरीपन के अभ्यास के लिए, शिव बाबा के समीप जाने के लिए, तो वो साधनाएं नहीं करते तो वैराग सूखा लगता है फिर, और ये बंधन बंधन ही बने रहते हैं। लेकिन अगर हम साधनाएं भी बराबर चालू रखेंगे तो ये जो बंधन है कटते जाएंगे।
जी, बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए बाबा कहते हैं कि किसी भी प्रकार की आसक्ति ना हो, मेरे परिवार का यह सदस्य ज्ञान में आ जाए ये संकल्प भी ना आए, और फिर बाबा ये भी कहते हैं कि चैरिटी बिगेंस एट होम, तो यहां हम इन दोनों बातों को कैसे समझें?
ये गलत इन्होंने बोल दिया कि मेरे परिवार का ये सदस्य भी ज्ञान में आ जाए ये संकल्प भी ना हो, गलत। ये संकल्प हो कि हमारे पूरे परिवार का कल्याण हो, ये शुभ भावना होनी ही चाहिए, ये इन्होंने गलत समझ लिया। मुरलियों में ये बात आई है, उसको ठीक से समझना है। चैरिटी बिगिंस एट होम, हमें अपने घर का ही कल्याण पहले करना है, लेकिन हम आसक्ति से कहते रहते हैं मेरे पति का कल्याण हो, करते कुछ नहीं, उससे कुछ फायदा नहीं।
जैसे कई बार बाबा कह देते हैं, जब माताएं कहते हैं कि बाबा मेरे पति का भी ताला खोलो, तो बाबा कहते हैं इसके लिए मैं थोड़ी आया हूं, ये तो तुम्हारा काम,
तुम खोलो, तुम खोलो। बाबा कहते हैं ये काम काम तुम्हारा है, तुम्हारी अच्छी स्थिति होगी, तुम उन्हें पवित्र भोजन खिलाओगे, तुम योगी बनोगी, ज्ञान को जीवन में धारण करेगी, तो वो व्यक्ति अंधा थोड़ा ही है, वो देखेगा आपका परिवर्तन और वो ज्ञान की ओर जरूर आकर्षित होगा। इसलिए बाबा कहते तुम करो, अगर बाबा कर दे तो ये कमजोर हो जाएंगे।
जी जी जी, मतलब बाबा हमें शक्तिशाली बनाना चाहते हैं और हमारे द्वारा कराना चाहते हैं।
हमें सबको ज्ञान में लाने की शुभ भावनाएं रखनी ही है।
जी जी,
इसमें
वैराग्य ने 17वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि कबीर ने एक दोहे में कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। क्या यह दोहा बेहद के वैराग्य तक की तरफ इशारा करता है?
बिल्कुल, यदि हमारी आत्मिक दृष्टि हो जाए, हमारा संभाव हो जाए, सबसे हम फ्रेंडली हो जाएं, तो ना काहू से दोस्ती माना न किसी से आसक्ति होगी और न किसी से निगेटिविटी होगी, ये बेहद का वैराग्य हो जाए।
जी जी, मतलब सबके साथ रहते हुए भी
संभाव
होगा। बुद्धि की भाषा है चित्र, अष्ट शक्तियों के चित्र को हम देखते हैं, समझते हैं चित्र के माध्यम से। ऐसे बेहद का वैराग्य का क्या कोई चित्र है?
सन्यासी को ले सकते हैं, किसी को सब कुछ छोड़ के कमंडल लेके चल दिया,
तब तो फिर उसी को फॉलो करने लगेंगे।
ब्रह्मा बाबा है, इसका सबसे अच्छा चित्र है। उसके चरित्र को ठीक से समझ लेंगे तो वो चित्र बहुत काम आएगा।
जी, बाबा कहते हैं भले धंधा धोरी करो पर मुझे याद करो। मैं जिस लौकिक प्रोफेशन में हूं वहां हमें सेल्स के टारगेट कंप्लीट करने होते हैं, ऐसे में हम कैसे अपने लौकिक प्रोफेशन तथा बाबा ने अभी जो समय अनुसार समेटना तथा बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए पुरुषार्थ पर अटेंशन रखने के लिए कहा है, तो यह कैसे बैलेंस करें? बार बार ऐसा लगता है कि हमें अपने प्रोफेशन के टारगेट तथा पुरुषार्थ में वैराग्य लाना, इसमें थोड़ी दिक्कत होती है।
देखिए, जो टारगेट दिया जाता है लोगों को, अब टारगेट तो उन्हें पूरा करना ही होगा
और उसके लिए मेहनत करनी
पड़ेगी, मेहनत भी करनी होगी और करनी चाहिए। किसी टारगेट को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ना, ये मनुष्य की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। लेकिन इसमें स्पिरिचुअलिटी को जोड़ा जा सकता है। समेटने की बात जो बाबा कहते हैं ना, मैं इसको एक शब्द में कहूंगा, व्यर्थ के विस्तार को समेट लो, बस, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और जो आपको टारगेट मिला है उसे आप हंसते हंसते पूर्ण कर सकेंगे। बस इतना आपको संभलना है कि बीच बीच में कभी बाबा का आह्वान कर लिया, कभी एक 10-20 सेकंड ऐसा रीरिपन का अभ्यास कर लिया, बीच बीच में स्वमान को रिपीट कर लिया, तो आप बहुत फ्रेश रहेंगे और जो कर्म आप कर रहे हैं आपको ऐसा नहीं लगेगा बस वही वो है आपके पास, तो स्पिरिचुअलिटी भी आपके पास रहेगी। ऐसा थोड़ा प्लानिंग करके काम पे जाया करें।
जी,
तो भले ही आप 10 घंटे काम करें, किसी को 12 भी करना पड़ता है, एक तो काम को लाइटली लेंगे, इजीली करेंगे, एंजॉय करेंगे, ये नहीं बहुत काम है, थक गए, क्या टारगेट, ये सब निगेटिविटी नहीं, काम तो हर व्यक्ति कर रहा है, और जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो बेकार है, न उनके पास कोई योग्यता रहती है, ना वो योगी बन पाते।
जी,
हमने देखा कोई कहे कि योगी बनने के लिए हमको फ्री कर दो, 5-7 दिन में बोर होके डिप्रेशन में जाने लगेंगे। इसलिए बहुत एक्टिव होना, जिम्मेदारियों को संभालना, टारगेट को पूर्ण करना, बट स्पिरिचुअलिटी को ज्वाइंट कर दो।
जी, जी, बाबा को साथ ले लें, अमृत वेला अच्छा हो, ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस जो आपने
बताई, जो बताई।
जी जी जी, कई बार जब ऐसी स्थिति होती है व्रता जी, बहुत ही लोड आ जाता है या बहुत टारगेट आदि आदि की बातें होती हैं, तो इनसे भी वैराग्य आने लगता है?
आने ही लगता है मनुष्य को। देखिए, मैं तो ये भी राय दूंगा कि अगर टू मच इन्वॉल्वमेंट कहीं आपका हो गया है तो उसे कम करो। अगर आप मालिक हैं, जिम्मेदार हैं, तो अपने साथी बना लो, सहयोगी बना लो, ताकि पूरा का पूरा लोड आपके ऊपर ना जाए, क्योंकि ये भी कर्म क्षेत्र पर एक बहुत बड़ी कला है कि मनुष्य को अपने साथी बना लेना चाहिए, उनमें विश्वास रखना चाहिए, उनकी योग्यताओं को बढ़ाना चाहिए, तो काम बढ़ जाएगा और बोझ हल्का हो जाएगा।
बिल्कुल, कार्य को मैनेज कर लिया जाए तो ये एक समाधान निकल सकता है। ज्ञान मिलने के बाद संसारी चीजों में ध्यान नहीं रहता, पहले भोजन में आनंद आता था, अब कुछ भी खा लूं वो आनंद नहीं आता, बाहर जाने की इच्छा नहीं करते, पुराने वस्त्र में ही रहते हैं, नए वस्त्र यूज करने की इच्छा नहीं होती, अलौकिक परिवार से बात करने की इच्छा नहीं होती, शायद लौकिक हो अलौकिक जो भी हो, क्या ये वैराग्य सही है?
नहीं, ये सही नहीं है, इसमें बैलेंस नहीं है। अगर खाने में भी टेस्ट ना आए तो उससे रस भी नहीं मिलेंगे शरीर को, उससे बहुत कुछ अच्छी प्राप्ति नहीं होगी। भोजन भी तो टॉनिक है ना, पेट्रोल है ना गाड़ी का, पेट्रोल ही ना हो गाड़ी में, पेट्रोल की बजाय पानी भर दिया गया हो, ऐसे ही हो गया कि टेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो ये गलत हो गया, इसके यहाँ कुछ मिस्टेक हो रही है जरूर, उसको ठीक करना पड़ेगा उनको जो भी हो रही
तो
है।
तो ये भी तो कहा जाता है आप स्वादेंद्रियों के प्रभाव से
पड़ी नहीं, स्वाद आए और स्वाद के अधीन न हो जाए, यह है स्वाद इंद्रिय से मुक्त होना। अभी अलौकिक या अलौकिक परिवार से बात करने की इच्छा नहीं होती, ये सूखापन हो गया, इसको वैराग्य नहीं कहते हैं। तो बात करने की इच्छा हो, क्योंकि हमारे परिवार में हमारा ईश्वरीय प्यार तो जग प्रसिद्ध है, ब्रह्मा कुमारियों के यहाँ जो प्यार है वो संसार में कहीं नहीं है। ये अलौकिक प्यार, ये निर्मल प्यार, ये निस्वार्थ प्यार, हम एक दूसरे को अच्छी फीलिंग्स देते हैं, व्यवहार करते हैं और करना सिखाते हैं, इसलिए यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है।
जी जी जी, तो क्या इन्हें क्या सजेस्ट करेंगे फिर?
अपने वैराग को रसयुक्त बनाए, सबसे मिले जुले लेकिन न्यारे और प्यारे, प्यार से मिले, सेवा में मान लो आप हैं, फिर तो सेवा का भी मन नहीं करेगा, वैराग हो जाएगा। सेवाओं में जाएं, लेकिन उसमें इतने न फंस जाएं कि जब आप सोने जा रहे हो तो वही वही याद आ रहा हो, जब आप योग कर रहे हो तो वही वही याद आ रहा हो। इसको कहते हैं न्यारे भी हो जाओ प्यारे भी हो जाओ।
बिल्कुल, मतलब एक बैलेंस हो। तो क्या बताते, जिसे कहेंगे कि एक जैसे राह से भटकने वाली स्थिति है कि हम वस्त्र भी यूज, अच्छे वस्त्र यूज ना करें, कहीं बाहर जाने की इच्छा नहीं हो रही है, कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है, किसी से मिलने की इच्छा नहीं हो रही है।
देखिए ये इफ यू डोंट माइंड, और जिसका प्रश्न है वो भी माइंड ना करे, ये एक डिप्रेशन या मानसिक रोग के लक्षण भी हो सकते हैं, इसलिए इनको थोड़ा अपने को ट्रीटमेंट भी ले लेना चाहिए।
जी जी, और सबसे मिलते जुलते हुए सेवाओं में लगना चाहिए।
अगर नहीं हो पा रहा है तो निश्चित रूप से मानसिक रोग है।
जी, लॉकडाउन के शुरू के दिनों में पुरुषार्थ पर अच्छा अटेंशन रहा, लेकिन अभी कुछ परिस्थितियां रेगुलर होने के कारण ढीलापन लग रहा है, कुछ करने को मन नहीं करता, क्या इसे उदासीपन कहेंगे या वैराग्य? यदि उदासी है तो मैं कैसे दूर?
नहीं, ये वैराग्य नहीं, उदासीनता है, उदासी आ गई है, जैसे मैंने कहा ना,
जैसे पहले वाले केस में
मैं बहुत पहले से कह रहा था कि 2020 से संसार में मानसिक रोग और डिप्रेशन बहुत बढ़ेगा, ये कोरोना काल में और बढ़ गया है, किसी में बीज पड़ गए हैं, तो ये बीज हैं। इसलिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, 108 बार लिख लें उठते ही, सारा दिन हल्के हल्के अभ्यास करें, अशरीरी होने के, स्वमान के, बाबा मेरे साथ है या बाबा के आह्वान के या भविष्य के नशे के, हल्के हल्के 4-5 अभ्यास ले लें, और थोड़ा जरूरत पड़े तो मेडिकेशन भी थोड़ी सी, तो जल्दी ठीक हो जाएंगे।
जी जी जी, प्रदीप जी, अगला है कि ऑफिस में जब हम काम करते हैं और ऐसा लगता है कि हम जितना काम करते हैं उतनी हमें सैलरी नहीं मिलती, इस स्थिति में अपने अंदर वैराग्य वृत्ति हम कैसे लाएं? वैसे तो इससे वैराग्य आनी जानी चाहिए कि सैलरी कम मिल रही है।
ये तो आजकल बहुतों के साथ हो रहा है, क्योंकि कंपनियां भी खाली, फैक्ट्री
जी, सैलरी शायद आधी कर दी,
तो सैलरी आधी कर दी, किसी को मिल ही नहीं रही, किसी को हटा दिया गया है, तो ये परिस्थिति आई है, लेकिन ये ठीक हो जाएगी। ये परिस्थितियां सदा नहीं चलती, संसार थम गया है फिर चलेगा, गाड़ी फिर तेज दौड़ेगी, ये होता रहेगा, इसलिए इसमें वैराग की बात नहीं है। अभी तो अगर मान लो आप, मैं लोगों को सजेस्ट किया करता हूँ, मान लो आप ये काम छोड़ देते हैं, अब खाली होते हैं, तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, मानसिक रोगी बन जाएंगे। इसलिए अपने को हेल्दी रखने के लिए, अपने को बिजी रखने के लिए, कुछ नई चीजें सीखने के लिए आप कार्यरत रहो, और उसमें थोड़ा अपना योग अभ्यास बढ़ा दो, तो उसके साथ साथ आपकी अपनी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। धन तो ऐसा है, आज कम है कल ज्यादा होगा, उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए।
जी, जी, जी,
संसार का ये हाल हो गया तो कोई करे क्या?
बिल्कुल।
अब कॉलेज कोई स्टूडेंट नहीं है, लेक्चरर हैं, उन्हें सैलरी देनी है, उनकी इनकम ही इतनी नहीं है, तो बेचारे दें कहां से?
बिल्कुल, मतलब पूरी सिचुएशन को हम समझें कि कैसी है,
सिचुएशन को समझ कर फिर थोड़ा सा खुश रहें, संतुष्ट रहें।
बिल्कुल, मतलब कार्य जारी रखें और थोड़ा सा धैर्यता रखें और पॉजिटिव रहें। आपने जैसे बात कही ब्रदर जी कि जैसे बहुत सारे मजदूर थे बॉम्बे से दिल्ली से, वो सब कोरोना काल शुरू हुआ तो भाग तो गए अपने घर, अब खाली हो गए हैं, तो वही स्थिति जो आप कह रहे हैं कि अब बेचारे सोच रहे हैं कि काम कहाँ मिले।
नहीं, वही हुआ, इतना डरा दिया गया लोगों को। अब देखो तब से अब कोरोना मैं समझता हूँ 50 गुना ज्यादा होगा।
जी जी जी।
लेकिन अब लोग डर नहीं रहे, कारोबार चालू कर दिए, अपना मास्क पहन रहे हैं, निर्भय हो गए हैं। तब इतना डरा दिया गया था कि इस मोहल्ले में 10 केस मिल गए, मरे हम तो, गए भागो यहां से, ऐसा कर दिया, बेचारे पैदल चलने लगे मजदूर। तो ये डर जो पैदा है, मैं तब भी कहता था डर जो पैदा किया जा रहा है, ये बेचारे वहां जाके करेंगे क्या?
बिल्कुल।
अब उनमें कर दिया कि चलो मरेंगे अपने घर ही, मरेंगे भूखे मरेंगे, ये तो नहीं होता ना, फिर से वापस लौट रहे हैं। और मैं उन सबको कहूंगा अगर आपकी फैक्ट्री आया, कारोबार चालू हो गया हो तो आप वापिस लौटें, और जो सावधानियां सरकार बता रही है उनको फॉलो करें, और ऐसा कुछ होगा नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सावधानी पूर्वक अपने कार्य करते रहें और जितना मिल रहा है उसमें अभी फिलहाल संतुष्ट रहें, स्थितियां परिस्थितियां बदल जाएंगे। दूसरों को परेशानी में देखते हैं तो हमें तकलीफ होती है। यदि घर वालों को हम आर्थिक रूप से सहयोग नहीं दे पाते हैं तो भी मन दुखी हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में हम अपने अंदर वैराग्य भाव को कैसे जागृत करें?
नहीं, पहले आपकी वो जिम्मेदारियां जरूरी हैं। घर की जिम्मेदारी आपकी है तो आपको मेहनत करके उन्हें संतुष्ट रखना ही चाहिए। वैराग्य तो आपका होगा ही, वैराग्य का ये अर्थ नहीं कि आप अपने कर्तव्यों को पूरा ना करें, आप उन्हें धन कमा के न दें। धन कमाएं लेकिन अनासक्त रहें, यही तो प्रैक्टिस है। धन कमाने में पूरी मेहनत करें, साथ साथ उसके कुछ अभ्यास भी चालू रखें, तो धन भी सहज मिलेगा। और ये तो एक शुद्ध हृदय की पहचान है कि दूसरों की तकलीफ देखकर तकलीफ होती है। बहुत लोग हैं तकलीफ देने में खुश होते हैं, वो निष्ठुर हैं। लेकिन जिन्हें दूसरों की तकलीफ देखकर रहम आता है, मदद करने की इच्छा होती है, रियली दे आर ग्रेट।
जी जी जी। अब रहते जी, जैसे लास्ट समय है, अब ऐसी स्थितियां बनेंगी जहां हम किसी की मदद भी इस रूप में नहीं कर पा रहे होंगे, तो फिर तब के लिए फिर क्या?
देखिए, तब के लिए तो जिसने ईश्वरीय खजाने जमा किए हैं वो मौज करेंगे, जिसके पास अस्त शक्तियां हैं उन्हें प्रकृति सब कुछ प्रदान करेगी। और मैं एक बात जब से लॉकडाउन शुरू हुआ कहता ही आ रहा हूं, हर चीज को स्वीकार करने की आदत डाल लें, चेंज तेजी से होगी। चेंज के साथ अपने, चेंज माना सृष्टि की चेंज, तो अपने विचारों को भी चेंज करते चले, जैसे हम पहले थे वैसा ही अब हो, जैसे बच्चे पहले पढ़ रहे थे वैसे अभी पढ़ें, जैसे नौकरियों में पहले हो रहा था वैसे ही अभी हो, अब ये सब चेंज हो रहा है। और जब कोई चीज चेंज होती है, चेंज की प्रक्रिया में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन हम जैसे जैसे इसको टॉलरेट करके आगे बढ़ेंगे तो सुनहरे दिन आ जाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल। अंतिम प्रश्न है व्रता जी, आपने अपने अंदर इस बेहद की वैराग्य वृत्ति को उत्पन्न करने के लिए अब तक क्या पुरुषार्थ किया है? कौन सा अभ्यास आप आज भी करते हैं? कौन से संकल्प आपको वैरागी बनाने में मदद करते हैं?
देखिए, जब बाबा अव्यक्त हुए तब मधुबन में बहुत ज्यादा वैराग की फीलिंग थी, और वो वैराग का इफेक्ट सबसे ज्यादा मुझे मिला, फायदा मिला। तो एक ही साल में मेरा योग का चार्ट बहुत सुंदर हो गया। वो कंटिन्यू रहा तो बहुत सारी चीजें जीवन में नेचुरल हो गई हैं। अब मुझे वैराग के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, जैसे मेरी कहीं आसक्ति जाती नहीं, साधन है कुछ भी है ठीक है, यूज हो रहा, कल नहीं होंगे, ओम शांति आनंद, जब हैं तो भी आनंद, जब नहीं होगा उससे ज्यादा आनंद। तो न्यारे और प्यारेपन की अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी, क्योंकि पूरा जीवन ये सब अभ्यास जो स्पिरिचुअल हैं करते रहे, होता रहा, इसमें कभी भी गिरावट नहीं आई है। इसलिए वैराग एक नेचुरल सी चीज है, ऐसा नहीं कि वैराग के लिए मुझे कुछ करना पड़ता है या सूखा सन्यासी बनना पड़ता है, नो, ये ऑटोमेटिक है।
जी जी। कभी ऐसा रहा कि किसी विशेष चीज में यदि राग रहा और उसके लिए वैराग्य उत्पन्न करने के लिए मेहनत करनी पड़ी हो?
नहीं, ऐसा मेरे साथ ज्यादा तो कहीं कुछ नहीं हुआ था, मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है, सब सहज होता रहा है। और मैं अपने साधनों को इतना बढ़ाया ही नहीं है कि उनसे वैराग की जरूरत पड़ जाए, सीमित रखा। विकार है ठीक है, यूज हो रही है, पुरानी हो गई, बदल गई है, ओम शांति, ठीक है, संभाल करने वाले दूसरे कर रहे हैं, मुझे तो ये भी याद नहीं रहता मेरे पास कपड़े कितने हैं तो सहज सब काम हो रहा है, क्योंकि इसका एक ही कारण है कि असली लक्ष्य अपनी साधनाओं पर रहा है
जी।
अटेंशन तो बाकी चीजों पर अटेंशन नेग्लिजिबल रहा है
जी जी जी। तो सार रूप में अब क्या प्रेरणा देंगे, विषय तो बहुत गहन है भ्राता जी और वैसे गंभीर करने वाला है, लेकिन मधुरता पूर्ण वैराग्य हो उसके लिए क्या कहेंगे?
बस कुछ गुणों पर हमें बहुत ध्यान देना है, हमारा व्यवहार सूखा न हो जाए, हमारे अंदर मधुरता भी रहे, हम खाएं भी अच्छा, पहने भी अच्छा, ठीक से रहें, ऐसे नहीं हम सूखे सन्यासी बन जाएं, हम बेगर की तरह रहने लगे, क्योंकि हम रॉयल कुल की बहुत बहुत रॉयल आत्माएं हैं। हमारे मंदिरों में हमारी मूर्तियों को भी कितना सजाते हैं, देवियों की मूर्तियां देखो, श्रृंगार कई कई बार, छप्पन भोग खिलाते हैं, लेकिन वो आना सकते हैं। देवताओं की यही विशेषता है, उनके पास अथाह धन संपदा है, प्रकृति भी मालिक है, प्यार भी वहां बहुत है, साधन संपन्नता हर एक के पास, पुष्प विमान है, दो दो चार चार जैसे आजकल कारे हैं
जी,
लेकिन वो आना सकते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इसलिए वो देवता हैं, पूज्य हैं। तो हमें भी ऐसा ही बैलेंस अपने जीवन में रखना है, पर जितना वैराग पर सोचते हैं उतना साधनाओं पर सोचें
जी।
शरीरीपन का ज्यादा अभ्यास करेंगे, पांच स्वरूपों का अभ्यास, स्वमान का अभ्यास, योग युक्त होने का, सवेरे उठने का, बहुत अटेंशन, तो एक स्पिरिचुअल दिनचर्या जब रहेगी तो वैराग नेचुरल रूप से जीवन में आ जाएगा
जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी, आपका सुंदर प्रकाश हम सबको मिला है बेहद के वैराग्य को लेकर, जरूर इसकी ओर हम सब कदम बढ़ाएंगे, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। विषय सचमुच बहुत सुंदर भी है, गहन भी है और समय की आवश्यकता भी है। मुझे बाबा के महावाक्य याद आते हैं कि ब्रह्मा बाबा की वैराग्य वृत्ति का ही परिणाम है वर्तमान सेवा और आप सब। हम विचार करें थोड़ी देर के लिए, यदि ब्रह्मा बाबा में वैराग्य न आया होता, वो तो अपने जीवन में कितने आनंदित थे, कितने सम्मानित जीवन जी रहे थे। यदि बाबा में वैराग्य ना आता तो हम सब क्या यहां होते? क्या ये हमारा जो बेहद का परिवार है, हमारा विद्यालय है, इतना विश्वव्यापी होता? क्या सब तक ईश्वर का संदेश पहुंचता, सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह मिल पाती? नहीं ना, केवल एक बाबा के बेहद के वैराग्य ने, उनकी साधना ने, उनकी हर प्रकार के त्याग ने इतना कुछ हम सबको दिया है और सारी विश्व के लिए जैसे एक रास्ता तैयार हो गया है मुक्ति, जीवन मुक्ति का, स्वर्ग का जैसे एक रास्ता तैयार हो रहा है, ऐसे ही हम सब भी फॉलो फादर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो जैसे बाबा ने किया वैसे हम सबको भी करना है, अपने जीवन में मधुरतापूर्ण, ज्ञान युक्त, बेहद के वैराग्य को शामिल करना है, क्योंकि जैसे शुरुआत हमने की थी, बाबा ने कहा है बेहद के वैराग्य से ही मुक्ति धाम के गेट खुलेंगे और इसी से ही सारे विश्व की आत्माओं में भी वैराग्य उत्पन्न होगा, पापों से वैराग्य, क्षणिक सुखों से वैराग्य, और उनका ध्यान बाबा की ओर जाएगा और सब मेरा बाबा कहकर घर की ओर चलने को तैयार होंगे, और इसके निमित्त हम सब हैं, ये हमारा भाग्य है। तो क्यों ना इस पर गहराई से हम विचार करें, अपने जीवन में शामिल करें। एक बार पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ओम शांति। चलें अब प्यारे परम शिक्षक बाबा को दिल से शुक्रिया करेंगे जिन्होंने हमारे जीवन को शिक्षाओं से सजाया है।
पल पल बहती, कल कल करती, समय की नदियां गाए, पल पल बहती, कल कल करती, समय की नदियां गाए, सच्ची कमाई कर लो भाई, जीवन बीता जाए, सच्ची कमाई कर लो भाई, जीवन बीता की नदियां गाए, ये घड़ी लौटना। कल कल करती।